ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं सीमा शर्मा। आरंभ में आज के मुख्य समाचार शीर्षक। सरकार ने लॉकडाउन में भी कुछ ढील। सरकारी कार्यालय आषाढ़ एक गत्ते से दो शिफ्ट में संचालन करने के लिए मंत्रिपरिषद की बैठक ने किया निर्णय। नेपाल भारत सीमा संबंधी प्रमाण संकलन करने के लिए किया गया 9 सदस्यों की विज्ञ समूह का गठन। आज अतिरिक्त 187 लोग डिस्चार्ज होकर घर पहुंचे, जिसके बाद नेपाल में कोरोना से मुक्त होने वाले लोगों की संख्या पहुंची 861 और विश्व में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या पहुंची 75 लाख से अधिक। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने दैनिक आधारभूत सेवा प्रवाह कर लोगों के जीवन को सहज बनाने के उद्देश्य से कोरोना वायरस के संक्रमण के नियंत्रण के लिए जारी किए गए लॉकडाउन में कुछ ढील देने का निर्णय किया है। मंत्रिपरिषद की इसी जेठ 22 और 28 गते हुई बैठक के निर्णयों के साझा करने के लिए आज संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार के प्रवक्ता एवं अर्थमंत्री तथा संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री डॉ युवराज खतिवड़ा ने कहा कि जन स्वास्थ्य मापदंड और सुरक्षा सावधानी अपनाते हुए कुछ सेवाएं और कार्यालयों को संचालन करने का निर्णय किया गया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवा से संबंधित सभी सेवाएं, कृषि और पशुपंछी से संबंधित व्यवसाय के उत्पादन से लेकर बिक्री वितरण तक के सभी गतिविधियों को सुचारू करने का निर्णय किया गया है। इसी तरह बैठक ने आषाढ़ एक गते से लागू होने के हिसाब से सरकारी कार्यालयों, शिक्षण संस्थाओं के प्रशासनिक काम, गैर सरकारी और निजी क्षेत्रों के कार्यालय, बैंक तथा वित्तीय संस्थाओं संचालन करने का निर्णय किया है। आषाढ़ एक गते से संचालन में लाए जाने वाले सभी प्रकार के कार्यालयों को सुबह 8 से दोपहर 1 और दोपहर 1 से शाम 6 बजे तक के दो शिफ्ट में खोला जाएगा। इस बात की जानकारी प्रवक्ता डॉ खतिवाड़ा ने दी। बैठक ने अत्यावश्यक सेवा अंतर्गत न आने वाले, जैसे कि शैक्षिक संस्थाओं, बगैर अनुमति वाले आंतरिक और बाह्य उड़ान, सभा, गोष्ठी, सेमिनार लगायत के सेवाओं को तत्काल बंद ही रखने का निर्णय किया है। इसी तरह काठमांडू घाटी के हक में घाटी से बाहर जाने और संबंधित जिला से बाहर जाने वाले सभी प्रकार के सवारी साधनों को भी तत्काल बंद ही रखने का निर्णय किया है। इसी तरह बैठक ने कोरोना वायरस संक्रमण के कारण उत्पन्न असहज परिस्थिति से इस साल के एसई का नतीजा, स्कूलों द्वारा दिए गए अंतिम परीक्षा के नतीजे के आधार पर राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा प्रमाण जारी करने का निर्णय किया है। बैठक ने नेपाल भारत सीमा संबंधी प्रमाण संकलन के लिए नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान के अध्यक्ष विष्णुराज उप्रेती के संयोजकत्व में 9 सदस्यों का विज्ञ समूह गठन किया है। राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक में प्रतिनिधि सभा में संदेश सहित प्राप्त विनियोजन विधेयक 2077 सर्वसम्मति से स्वीकृत किया। राष्ट्रीय सभा की अगली बैठक आगामी 22 गते रविवार सुबह 11 बजे के लिए बुलाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन पूर्ण रूप से खुलने के बाद 30 दिनों के अंदर टैक्स भर पाने के हिसाब से व्यवस्था मिलाने का सरकार के नाम अंतरिम आदेश जारी किया है। न्यायाधीश द्वय अनिल कुमार सिन्हा और मनोज कुमार शर्मा की संयुक्त इजलास ने सरकार के नाम ऐसा आदेश जारी किया। आज अतिरिक्त 250 लोगों में कोरोना का संक्रमण पुष्टि होने के बाद नेपाल में कुल संक्रमितों की संख्या 4614 पहुंची है। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के प्रवक्ता डॉ जागेश्वर गौतम ने इस बात की जानकारी दी। इसी तरह आज अतिरिक्त 187 लोग डिस्चार्ज होने के बाद कोरोना से मुक्त होने वाले लोगों की संख्या 861 पहुंची है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब वक्त है व्यावसायिक विश्राम का।
ल्यान्डलाइन फोनमा समस्या छ।
1498 फोन गर्नुहोस्।
समस्या पोस्टपेनमा नि आयो।
1498 फोन गर्नुहोस्।
ओहो सम्झे, प्रिपेडको पुक नम्बर पनि चाहिएको थियो।
त्यसको लागि पनि 1498 फोन गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकमको जीएसएम सीडीएमए मोबाइल तथा ल्यान्डलाइनमा कुनै पनि समस्या आएमा जे सोध्न मन छ 1498 फोन गरेर सोध्नुहोस्। यो नम्बरमा फोन गर्दा पैसा लाग्दैन।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। विदेश में फंसे हुए नेपाली को स्वदेश वापस लाने के लिए नेपाल वायु सेवा निगम ने अपनी उड़ान कार्यतालिका साझा की है। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सरकार के निर्णय के हिसाब से सरकार वालाओं के साथ विचार विमर्श कर नेपाल एयरलाइंस को 24 और हिमालय एयरलाइंस को 19 उड़ाने भरने की अनुमति दी थी। इसी तरह 24 विदेशी एयरलाइंसों को उड़ाने भरने देने की तालिका मंत्रालय ने तय की है। कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति के सदस्यों ने भूमि बैंक की स्थापना, सुकुम्बासी समस्या का समाधान, आयोग की पूर्णता, भू उपयोग नीति और आईन के क्रियान्वयन तथा सहकारी संस्थाओं को दुरुस्त रखने के लिए सरकार का ध्यानाकर्षण कराया है। आज सिंह दरबार में हुई बैठक में समिति के सदस्यों ने इन विषयों पर सरकार का ध्यानाकर्षण कराया। कंचनपुर की बेदकोट, भीमदत्त और महाकाली नगरपालिका में आवास विहीन विपन्न परिवारों के लिए नमूना एकीकृत बस्ती बनाई जाएगी। तीनों स्थानीय तहों ने अपने क्षेत्रों में रहे आवास विहीन विपन्न परिवारों को आवास के लिए नमूना बस्ती बनाने की तैयारी की है। विपन्न, भूमिहीन और दलित समुदायों को लक्षित कर आवास बनाया जाएगा। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री लेखराज भट्ट ने कहा कि सरकार कोरोना नियंत्रण को उच्च प्राथमिकता देकर आगे बढ़ रही है। आज धनगढ़ी विमानस्थल में पत्रकार के साथ बातचीत करते हुए मंत्री भट्ट ने कहा कि कोरोना महामारी से प्रभावित अर्थतंत्र को चलायमान बनाने के लिए लॉकडाउन में ढील दी गई है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। कोरोना वायरस का कहर पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है। दुनिया भर में कोरोना के अब तक 75,15,000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना से मौत का आंकड़ा भी बढ़कर 4,20,000 से अधिक पहुंच चुका है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में कोरोना से अब तक कुल 1,15,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वहां कुल संक्रमित की मामला 20,71,000 से अधिक सामने आ चुका है। इसी तरह ब्राजील में कोरोना संक्रमित व्यक्ति 7,75,000 से पार कर चुका है और वायरस से 39,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। रूस में 5,02,000 से अधिक व्यक्ति कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और 7,000 से अधिक की जाने कोरोना वायरस से जा चुका है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार शीर्षक एक बार फिर। सरकार ने लॉकडाउन में की कुछ ढील। सरकारी कार्यालय आषाढ़ एक गते से दो शिफ्ट में संचालन करने के लिए मंत्रिपरिषद की बैठक ने किया निर्णय। नेपाल भारत सीमा संबंधी प्रमाण संकलन करने के लिए किया गया 9 सदस्यों की विज्ञ समूह का गठन। आज अतिरिक्त 187 लोग डिस्चार्ज होकर घर पहुंचे, जिसके बाद नेपाल में कोरोना से मुक्त होने वाले लोगों की संख्या पहुंची 861 और विश्व में कोरोना वायरस से संक्रमित की संख्या पहुंची 75,00,000 से अधिक। इसी के साथ हिंदी समाचार बुलेटिन से कल तक के लिए दीजिए आज्ञा। सुनते रहिए रेडियो नेपाल। शुभरात्रि।